समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। दोस्तों, जरूरी है कि हम सभी मुश्किलों का मुस्कुराकर सामना करें, क्योंकि ये हुनर हर किसी के पास नहीं है। इसी के साथ आपको मेरा नमस्कार। ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपको देते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है। खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार सरफिरोजी, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, एंड अलोंग विद दैट यू आर ऑल ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। Like Sarfirozi already introduced me and herself, I'm Tanvi Khurana and she's Sarfirozi. And for you, in the next 30 minutes, we have a lot in store for you. She has already introduced the program to you, but let me just add a few more things. We will be having a discussion segment, Dateline India, some reports, some capsules, some tributes, and a lot more. And with that, I just want to wish everyone a very happy Sunday. So be free, smile more, appreciate the little things that bring us joy, and have a wonderful day ahead. Let's begin our program with the headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks people for reiterating faith in the constitution and democratic system in his first Mann Ki Baat program on Akashvani after general elections.
श्री मोदी ने विशेष अभियान एक पेड़ माँ के नाम के जरिए लोगों से अपनी माँ के साथ मिलकर पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने स्थानीय उत्पाद बनाने और बढ़ावा देने में जनजातीय सहकारी समितियों के प्रयासों की सराहना की।
Prime Minister congratulates Akashvani on completing 50 years of broadcasting Sanskrit Bulletin.
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
एंड इन विमेन्स क्रिकेट, इंडिया फोर्स साउथ अफ्रीका टू फॉलो ऑन इन द वन ऑफ टेस्ट मैच इन चेन्नई विद 8 विकेट्स हॉल बाय स्पिनर स्ने राणा। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about Mann Ki Baat.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग और मतदान प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 जून महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हूल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये दिन वीर सिद्धो और कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों का विरोध किया था।
यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। हमारे संथाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कान्हू शहीद हो गए।
Mr. Modi spoke about the special campaign launched on World Environment Day this year, Ek Ped Ma Ke Naam. He appealed to people from all over the world to plant a tree along with their mothers or in their mother's name. He said this campaign has provided everyone with an opportunity to express affection towards their mothers by sharing their pictures on social media.
इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने इस पहल के लिए कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। योग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी, क्योंकि आकाशवाणी संस्कृत आज अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन से बहुत से लोगों को संस्कृत से जोड़ रखा गया है।
मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम् किञ्चित् चर्चां संस्कृत भाषायां आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूँ। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूँ।
आकाशवाणी पर संस्कृत के समाचार बुलेटिन को शुरू हुए आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
आकाशवाणी पर संस्कृत समाचार का पहला प्रसारण 30 जून 1974 को हुआ था। आरंभ में 5 मिनट का दैनिक संस्कृत समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे शुरू हुआ और बाद में इसका समय बदलकर सुबह 6:55 कर दिया गया। 10 मिनट का दूसरा बुलेटिन शाम 6:10 पर शुरू हुआ और बाद में इसका समय बदलकर 6:20 कर दिया गया। आज भी इसी समय पर दिन में 2 बार आकाशवाणी पर संस्कृत समाचार के बुलेटिन प्रसारित होते हैं। अपनी विशिष्ट शैली में आकाशवाणी संस्कृत समाचार के माध्यम से पिछले 50 वर्षों से देशवासियों तक संस्कृत भाषा को पहुंचा रहा है। इस अवसर पर प्रख्यात संस्कृत विद्वान और संस्कृत समाचार वक्ता डॉ बल देवानंद सागर ने लोगों को बधाई दी।
आकाशवाणी के संस्कृत समाचार के प्रसारण की सुवर्ण जयंती वार्षिकी 29 जून 2024 को संपन्न हो रही है। इस ऐतिहासिक मंगल अवसर पर मैं बलदेवानंद सागर सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन के साथ आधुनिक संस्कृत पत्रकारिता के उत्कर्ष और प्रचार प्रसार के लिए मंगल कामना करता हूँ। मुझे इस प्रसारण के आरंभिक प्रसारणकर्ताओं में से एक होने का सौभाग्य मिला है। इस आधार से इस शुभ अवसर पर संस्कृत के विद्वानों, विद्यार्थियों, अनुरागियों और समर्पित कार्यकर्ताओं को सविनय कहना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा और संस्कृत विद्या के लिए हमें आज स्वर्णिम अवसर मिला है। अपने अनुभव के आधार पर बड़े विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूँ कि कृत्रिम प्रज्ञा, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरजाल सुविधाओं के कारण संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करना अब सरल हो गया है।
आकाशवाणी अपने संस्कृत समाचार बुलेटिन के माध्यम से आगे भी निरंतर इस प्राचीनतम भाषा का प्रचार प्रसार करता रहेगा। परिक्रमा के लिए कृष्ण प्रसाद उपाध्याय के साथ समाचार कक्ष से मैं शक्ति प्रताप सिंह।
Mr. Modi said Sanskrit has played a big role in the progress of ancient Indian knowledge and science. He stressed that Sanskrit should be respected and connected with people's daily life. He cited an example of such an effort in Bengaluru's Cuban Park. Every Sunday, children, youth and elders talk to each other in Sanskrit in this park. The initiative called Sanskrit Weekend was started by Samashti Gubbi through a website. It has become very popular among the people of Bengaluru.
श्री मोदी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद पवित्र रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी का भी उल्लेख किया तथा इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज के लिए भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से लोगों से एक बार फिर जुड़ने में प्रसन्नता व्यक्त की। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है।
More than 13,000 pilgrims visited the holy cave shrine of Amarnath yesterday on the first day of the annual pilgrimage in the South Kashmir Himalayas and tight security. Meanwhile, another batch, third batch from Jammu of 6,619 pilgrims left Bhagwati Nagar Yatri Nivas base camp in Jammu for the Kashmir Valley to perform pilgrimage to Amarnath Cave Shrine. Chanting Bham Bham Bole, the pilgrims left the base camp in a cavalcade of 319 early this morning. These include 5,143 men 1,141 women, 18 children, 241 sadhus and 76 sadhvis. Of these, 2,781 pilgrims left for Baltal at 3:50 a.m. and 3,838 for Pahalgam base camp started their journey at 4:45 a.m. With this, the number of pilgrims who left for the Amarnath Cave Shrine from the Jammu base camp climbs to 15,251. More on this from our correspondent.
Bolo, Baba! बाबा अमरनाथ बम बम भोले हमें उनमें हम बाबा अमरनाथ बम बम भोले हमें
Early this morning, the third batch of pilgrims left Bhagwati Nagar Yatri Nivas Base Camp Jammu for Kashmir Valley to perform pilgrimage to Sri Amarnath Ji Shrine Cave. In addition to routine Bam Bam Bhole Uchcharan, today we saw devotees chanting Bharat Mata Ki Jai and Chak De India. That reflects the manifold increase in their enthusiasm after India's victory in ICC T20. This is Jagmohan Sharma from Jammu.
बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया के आसपास गंडक नदी का क्षेत्र घड़ियालों के संरक्षण के लिए एक बेहतर केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। बिहार सरकार और वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत 11 वर्ष पहले की थी। इसके तहत गंडक नदी में पाए जाने वाले घड़ियालों के अंडों की हैचिंग की जाती है और अंडों से निकले छोटे बच्चों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाता है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय।
बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र ने अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ घड़ियालों के प्रजनन और उनके अस्तित्व बचाने में अच्छी सफलता पाई है। इस क्षेत्र से बहने वाली गंडक नदी घड़ियालों के लिए अच्छा प्राकृतिक आवास मानी जाती है। इसे देखते हुए वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर गंडक घड़ियाल रिकवरी परियोजना की शुरुआत की थी। इस वर्ष बरसात शुरू होते ही अंडों के फूटने के बाद 160 नवजात घड़ियालों को गंडक नदी में प्रवाहित किया गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय निदेशक नेसामणि के बताते हैं कि यहाँ प्रशिक्षित कर्मी हैं जो सावधानी बरतते हुए हैचिंग प्रक्रिया का पालन करते हैं।
अंडा का प्रोटेक्शन करके उसको रिलीज करते हैं ताकि उसमें जो है पॉपुलेशन इसकी अच्छा हो जाएगी। इस तरह की इस साल में जगह देखेंगे 5 जगह पर नेस्टिंग हुई थी, 5 जगह से हम लोग उसको प्रोटेक्शन करके जो अराउंड 127 हैचलिंग्स हम लोग इस अंडा में रिलीज किए ताकि इसके मतलब पॉपुलेशन अच्छा होगा। इस उसमें गंडक में खास करके जो है इधर वेस्ट चंपारण जिला का जो गंडक नदी है इसको पॉपुलेशन अच्छी बढ़ी हुई है। अब देखने की मिलती है कि घड़ियाल की संख्या काफी अच्छी इंप्रूव हुई है। यहाँ
परियोजना के शुरू होने के बाद से गंडक नदी में अब तक 600 घड़ियाल के बच्चों को छोड़ा गया है। मीठे पानी का जीव होने के कारण इस क्षेत्र में इनके संवर्धन की परिस्थितियाँ भी अनुकूल हैं। केंद्र सरकार के डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सर्वे में भी यह बात साबित हुई है। घड़ियालों के संरक्षण से नेपाल के गंडक नदी में जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में और गंगा के जलीय पारिस्थितिकीय व्यवस्था में घड़ियालों की संख्या बढ़ी है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
In a bid to facilitate and further strengthen the development of collaborative pursuits in the fields of forensic and prosecution training, research and testing of forensic samples, a memorandum of understanding MOU was signed today between the Haryana government and the National Forensic Science University, Gandhinagar, Gujarat, for establishment of a center of excellence in training and laboratory testing facilities in forensic sciences dedicated for Chinhit Aparadh cases.
A MOU was signed yesterday between the Government of Haryana and the National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat, for establishment of a Center of Excellence in Training and Laboratory Testing Facilities in Forensic Science for Identified Crime Cases in Haryana. The MOU signing ceremony was held in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Union Minister of Power, Housing and Urban Affairs Manohar Lal, Haryana Chief Minister Nayak Singh Saini, and other ministers and senior officers. Under this MOU, a robust state-of-the-art, a center of excellence in training and laboratory testing facilities in forensic sciences will be established, and NFSU will guide the research as well as testing of forensic samples and also provide expert knowledge. Under the aegis of the Haryana Institute of Public Administration, training of judicial officers, public prosecutors, police and other investigating agencies in forensic analysis and other aspects of criminal justice delivery will be carried out in consultation with NFSU. This intervention will further help the state of Haryana achieve the ideals envisaged under the scheme of Chinhit Aparad, by which the state government ainsto identify serious and heinous crimes and collect actionable forensic evidence, particularly for crimes involving 6 or more years of imprisonment, and ensure a speedy and effective trial for such matters, thereby enhancing the conviction rate and improving the overall security in the state. The state government has already signed an MOU with NFSU for testing of drugs and psychotropic substances. This MOU will further strengthen this collaboration. A proposal for setting up of a regional campus of National Forensic Science University over land measuring 50 acres in Haryana has already been sent by Haryana government to MHA for its consideration. Akanksha Saxena for Parikrama from Chandigarh.
In today's Defence News Capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defence, we bring to you a success story of one startup that is contributing in transforming indigenous defence and space technological landscape. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
At the South Block Lawn in New Delhi, we have with us Mr. Akash and Jyoti Sinha, the two young entrepreneurs and the founders of defense and space startup Omnipresent Robot Technologies, which recently got a contract from Indian Air Force as part of IDEX Challenge. To start the conversation, please tell our listeners about yourself and your startup.
Hi, I'm Jyoti Sinha. I am co-founder and CTO at Omnipresent Robot Technologies.
Hello, I'm Akash Sinha, CEO and founder at Omnipresent Robot Technologies. So our company has been into designing AI and ML software for drones, space and aerospace industries. We were part of ISRO's Chandrayaan mission. We designed the software for perception and navigation of Pragyan rover. And here in the IDEX challenge, we are designing AI ML software for satellite-based solution for Air Force.
If you can elaborate on the contract that you have signed with the Indian Air Force.
This is a very interesting solution because in near real time, Air Force will be able to get updates. So for example, if our satellites are surveying border areas, in near real time, we'll know if new infrastructure has come up, if new military equipment has been parked around borders and so forth. So this will be a game changer as from the technology point of view.
The other thing which we are also looking forward to work on is the multi-sensor payload. Because till now, I think we have had a very good stint with electro-optical sensor-based satellites. But this time, we are working on a multi-sensor payload for satellites, where we would be able to swap the sensors from electro-optical, hyperspectral, synthetic aperture radar, and also the traditional electro-optical sensors. So we're looking very much forward to working on this and providing the eyes and an intelligent brain to the defense.
How is IDEX contributing in transforming the defense ecosystem?
I would just say one thing is that, we are standing here inside the Ministry of Defense arena, which would not have been possible if IDEX was not there. They are going out and trying to figure out startups on a very nascent level, the different technologies, they're working on, and trying to figure out solutions that are relevant now and also in the next 5 years. So both cutting and the state-of-the-art technologies and also future technologies they are looking at, and trying to build an ecosystem for startups, which is very commendable.
Yeah, I'll add something to what Jyoti said. So, see, one of the great things is 350th IDEX agreement was signed. That also means 350 startups have been created in defense space. Because, see, every little startup who doesn't have enough money to get into defense or to build for defense, I think IDEX is a boon for them.
More than, supporting the startups for the seed fund, the spark grant, a government also has some follow-up procurement orders. So the startups are also assured, they're raring to go and reach at the stage. So it's a very big motivation, I would say.
You both had an illustrious, a very lucrative career in the United States. Then you left your job and came back to India and embarked on a new journey of entrepreneurship. What motivated you to be entrepreneur?
I think we were working in a different culture for quite some time, you know, in working in the States. And we were working for defense companies. And once we decided that we want to go back, we were trying to find a hard time to accommodate to that culture. Okay, the working times and the flexibility and all. So we said, okay, why don't we start something? And then the ecosystem also, we felt that we should develop the similar kind of technologies, maybe even better for our own country. And that is where we thought that we can co-found this startup, Omnipresent. And it's been an amazing journey.
Kind of our journey was together. We were partners in crime right from the college times. We studied together in college and worked also together. And now we're raising a family together and a startup together. You know, so I always say we have three kids, the two children, and then there is one Omnipresent. It's very satisfying to see all three of them growing up and doing great things.
And before we conclude, what is your message to the young citizens of India who are listening to you through this broadcast?
I would encourage everybody, to every student who's graduating, that give it a shot at being job creator rather than a job seeker. Even if you fail, you will learn so much in just a few months or a few years that, you know, even if you join a job after that, you will have a great amount of experience. And if you succeed, there is absolutely no glass ceiling here. You can go as high as sky's the limit here.
For Parikrama, this is Anand Swadav from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day. On the 30th of June 1855, the Santhal uprising began. The indigenous tribe of Santhals from the then Bengal Presidency rose up against the British East India Company and the Zamindari system. The Santhal Hul, which started 2 years before the 1857 revolt, continued till November the 10th, 1855, when martial law was declared.
Santhals fought against the unjust revenue system of permanent settlement that exploited the community, surviving on forest products and the barter system. According to the Permanent Settlement Act of 1793 by Lord Cornwallis, landlords would have perpetual and hereditary rights over the lands demarcated under their jurisdiction until and unless they were able to pay the required land revenue.
Thus, to create this new class of zamindars, the British confiscated lands from the Santhals and other tribes. The Santhals had to serve these landlords, who would take away a large chunk of their agricultural produce, leaving them with almost nothing. To sustain themselves, they borrowed from the moneylenders, who would lend at exorbitant rates to an already vulnerable and impoverished group.
Santhals were forced into bonded labor and, generation after generation, cultivated land to meet the demands of the British. Many had to work in indigo plantations or for the railway constructions that the British initiated.
Brothers of the Murmu clan, Sidhu, Kanhu, Chand and Bhairav, along with their sisters Polo and Jhano, led the uprising against the blatant exploitations of the Santhals. They organized thousands of Santhals from neighboring areas after declaring that freedom can only be won by armed war.
As the uprising gained power, the company administration sent more troops to fight Santhals, who in turn fought using their traditional weapons. The British put a prize money of 10,000 rupees for Sidhu and Kanhu, the prominent leaders of the uprising.
Santhals lost thousands of their kin and tens of villagers as the war elephants destroyed their homes. The colonizers managed to suppress the uprising, and Sidhu and Kanhu were killed in action. However, the sacrifices of the Santhals were not in vain. The uprising concluded with the issuing of the Santhal Parganas Tenancy Act, which provided the people some protection from colonial exploitation. Regular police force was abolished and the village head was put in charge of maintaining peace.
the 30th of June, 1857, the Battle of Chinhut was fought between British forces and Indian independence activists during the First War of Indian Independence at Ismail Ganj near Chinhut, Awadh. The British were led by the Chief Commissioner of Awadh, Henry Lawrence, and the Indian activists were led by Barkat Ahmed, an ex-officer of the British Army. The Battle of Chinhut was one of the few major victories which Indian forces obtained in open combat with the British during the uprising.
The British force was greatly outnumbered by the Indian Independence Army by about 6,000 to 600. The Indians were in well-prepared positions behind stone walls in the village and inflicted heavy casualties on the British forces. The regiment's acting commanding officer, Lieutenant Colonel William Case, was killed, as were several officers. Many of the British soldiers, especially Indian artillery men, also joined the Indian forces, overturning their guns and cutting the traces on the horses. The British were forced to retreat to the British residency at Lucknow.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और लेते हैं वहां की जानकारी.
India won the ICC Men's T20 Cricket World Cup, defeating South Africa by 7 runs in a classic final at Kensington Oval Stadium, Barbados yesterday. Virat Kohli was declared the player of the match for his fabulous innings. Pacer Jasprit Bumrah was awarded the player of the tournament for picking up 15 wickets in 8 games with a bowling economy rate of below 6. President, Vice President and Prime Minister have congratulated the Indian team on winning the T20 वर्ल्ड कप 2024.
महिला क्रिकेट में चेन्नई में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 266 रन बनाए. भारत की स्नेह राणा ने दक्षिण अफ्रीका के 8 खिलाड़ियों को आउट करके इतिहास रच दिया है. दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए. स्नेह राणा टेस्ट क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं. फॉलो ऑन मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी खेल रही है. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं कल्याण जी वीरजी शाह को, जिनका आज जन्मदिन है. हिंदी सिनेमा के ये प्रसिद्ध संगीतकार थे. ये भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे. कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा. भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय कल्याण जी को ही जाता है. 1974 में प्रदर्शित फिल्म कोरा कागज के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला. आइए इस मौके पर सुनते हैं उनकी इसी फिल्म का ये गाना.
कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसे तेरा.
सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसे तेरा.
Today is the birthday of Chintamani Nagesh Ramachandra Rao, CNR Rao, born on 30th of June, that is today, in 1934. He is an Indian chemist who has worked mainly in solid state and structural chemistry. He has honorary doctorates from 86 universities from around the world and has authored around 1800 research publications and 56 books. He is described as a scientist who had won all possible awards in his field except the Nobel Prize. Today is also the birthday of Michael Phelps, an American former competitive swimmer. He's the most successful and most decorated Olympian of all time with a total of 28 medals. He also holds the all-time records for Olympic gold medals, Olympic gold medals in individual events and Olympic medals in individual events.
और श्रोताओं, आज ही जयंती है नागार्जुन की। ये हिंदी विचारधारा के लेखक और कवि थे। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। वर्ष 1969 में अपनी रचना पत्रहीन नगन गाछ मैथिली के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए सरफिरोजी और तन्वी खुराना को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।